नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज आपके साथ मैं हूं जागृति शर्मा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ अजय मसंद। अजय, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार जागृति जी।
कार्यक्रम में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। क्लासिकल शतरंज में आर प्रज्ञानंदा ने मैग्नस कार्लसन पर जीत दर्ज कर इतिहास रचा। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के तीसरे राउंड के बाद प्रज्ञानंदा और वैशाली अपने अपने वर्ग में शीर्ष पर। विश्व मुक्केबाजी क्वालिफायर में भारत के सचिन सिवाच क्वार्टर फाइनल में। त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंतिम आठ में पहुंची। और भारत की रितिका सीलन हांगकांग पीएसए चैलेंज कप स्क्वाश टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में। और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक शानदार, जानदार और धमाकेदार जीत जो शतरंज में दर्ज की है भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने। इसी के साथ आर प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर एक मैग्नस कार्लसन पर क्लासिकल गेम में अपनी पहली जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया है। इस इतिहास को किस तरह देखते हैं, एक 18 साल का युवा और एक 33 से 34 साल का एक्सपीरियंस्ड।
जी हाँ, 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के, और प्रज्ञानंदा ने इनको क्लासिकल चेस में, ऐसा नहीं है कि प्रज्ञानंदा ने इनको हराया नहीं है पहले, इन्होंने प्रज्ञानंदा जब 16 या 16.5 साल के थे तब इन्होंने इनको रैपिड और ब्लिट्स चेस में तब से हराते आए। मेरे ख्याल से 4-5 जीते रैपिड चेस और ब्लिट्स चेस में हरा चुके हैं मैग्नस कार्लसन को, लेकिन क्लासिकल चेस में इन्होंने इनको पहली बार हराया, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। क्योंकि क्लासिकल चेस ऐसा होता है, इट्स काइंड ऑफ अ टेस्ट मैच, स्लो चेस होता है, रैपिड और ब्रिट्स चेस ऐसी होती है कि इमीडिएटली आपको सोचना होता है, आपको मूव करना पड़ता है चेस में, लेकिन क्लासिकल चेस में टाइम मिल जाता है सोचने के लिए। तो उसमें मैग्नस कार्लसन का कोई जवाब नहीं है पूरी दुनिया में, 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं और इस फॉर्मेट में, तो उनको हराना ही बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एज डिफरेंस देखें प्रज्ञानंदा के बीच में और मैग्नस कार्लसन के बीच में, प्रज्ञानंदा सिर्फ 18 साल के हैं और मैग्नस कार्लसन 13 साल के हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये भी देख सकते हैं कि इंडियन चेस जो है कितना आगे बढ़ चुकी है, कितने सारे टीनएजर्स आ गए हैं, विदित गुजराती हो गए, डी गुकेश हो गए, गुकेश जो है अब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, टाइटल के लिए लड़ेंगे डिंग लेरेन से, वो भी इस टूर्नामेंट में नॉर्वे चेस में खेल रहे हैं, लेकिन गुकेश नहीं है इस टूर्नामेंट में। तो खैर, प्रज्ञानंदा रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो कमाल की बात तो ये 5.5 पॉइंट्स से जो है लीड कर रहे हैं। इट्स अ सिक्स जो वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप सिक्स प्लेयर्स हैं मेन में और टॉप सिक्स इन विमेन, उनको लीड कर रहे हैं। और एक और काबिले तारीफ चीज ये है कि उनकी जो बहन है प्रज्ञानंदा की, आर वैशाली, वो विमेन सेक्शन को लीड करी। ऑल्दो हमारी इंडियन एक और प्लेयर है विमेन सेक्शन में, कोनेरू हम्पी, जो एशियन गेम्स में 2 गोल्ड जीत चुकी है, 2006 दोहा एशियन गेम्स उन्होंने 2 गोल्ड जीते थे, वो 3 पॉइंट पे हैं, उनका टाइटल जीतने का ऐसा कोई ज्यादा चांस नहीं लग रहा है। लेकिन आर वैशाली और प्रज्ञानंदा दोनों ही लीड कर रहे हैं अपनी पूरी फील्ड को, 6 मेंबर फील्ड प्लेयर फील्ड को, तो डेफिनेटली ये लोग दोनों टाइटल के हकदार बन सकते हैं। अभी थोड़े बहुत राउंड्स और बाकी हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि इंडियन चेस हैज कम ऑफ एज विश्वनाथन आनंद के बाद, एक अगला सवाल हो रहा था कि हु आफ्टर विश्वनाथन आनंद, और ये जितने भी बच्चे हैं, काफी सारे बच्चे जैसे वैशाली हो गया, प्रज्ञानंदा हो गया, गुकेश हो गया, विदित गुजर, ये सब जो हैं विश्वनाथन आनंद के साथ उन्हीं की एकेडमी से जुड़े हैं, और जिस हिसाब से उनको ये विश्वनाथन आनंद उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, उनको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन भी जो है बहुत ज्यादा पैसा लगा रही। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है वो इंडिया में ही जो है ये जो वर्ल्ड टाइटल करवाने की दावेदारी का आगे कर रही है, तो अगर वो हो जाता है, और होपफुली अगर होगा तो चेन्नई में ही होगा या साउथ में ही कहीं होगा, तो इंडिया डी कुकेश को एक बहुत अच्छा एक एडवांटेज भी मिल जाएगा, होम एडवांटेज मिल जाएगा जीतने के लिए टाइटल। एंड आफ्टर विश्वनाथन आनंद, जो है जो हमारा टाइटल ड्राउट चला रहा है, वर्ल्ड टाइटल नहीं जीत पाया है कोई इंडियन, तो वो शायद डी कोकेश उस ड्राउट को ब्रेक करके इंडिया को टाइटल जिताएं और डिंग लिरेन को हरा के।
जी टूर्नामेंट में विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी अमेरिका के फैबियानो कारुआना ने मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को हरा दिया। हार के बाद लिरेन इस टूर्नामेंट में अपने वर्ग में सबसे नीचे आ गए हैं। लिरेन के खिलाफ प्रज्ञानंदा ने इसी टूर्नामेंट में ड्रॉ खेला था। वहीं अमेरिका के हिकारू नाकामुरा ने फ्रांस के अली रेजा फिरोजा के खिलाफ अपना आर्मागेडन गेम जीतकर आधा अंक अर्जित किया और तालिका में वो तीसरे स्थान पर आ गए हैं। चौथे दौर में यानी कि अब जो अगला दौर होना है उसमें नाकामुरा का मुकाबला प्रज्ञानंदा से होगा। बात आप कर रहे थे अभी महिला वर्ग की भी, तो जैसे हम जब बात करते हैं तो आर प्रज्ञानंदा है या फिर डी गुकेश है, वो एक बड़े सितारे बन चुके हैं चेस के, तो उस तरीके से जो महिलाओं में है जैसे आर वैशाली है, कुनेरू हम्पी है, तो आगे और क्या संभावना है?
देखिए आर वैशाली तो खैर जो है सो है, मतलब उन्होंने तो अपना इतनी छोटी एज में जो है थोड़ी सी बड़ी है अपना प्रज्ञानंदा से, लेकिन कुनेरू हम्पी तो एक वेटरन है, उनकी तो कोई बात ही नहीं। उन्होंने तो दो एशियन गेम्स टाइटल जीते हुए हैं और वो ग्रैंड मास्टर हैं, और अब यही जो है ग्रैंड मास्टर की उपलब्धि जो है वो आज वैशाली ने भी अर्जित कर ली है। तो विमेन दे आर नॉट विमेन ग्रैंड मास्टर्स नाउ, दे आर ग्रैंड मास्टर्स, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है विमेन्स चेस के लिए। और आपने ओलंपियाड जो चेस ओलंपियाड चेन्नई में हुआ था सन 2022 में, आपने उन वहां देखा ही था कि कितना अच्छा हिंदुस्तानी इंडियन विमेन ने प्रदर्शन किया था और मेडल्स जीते थे। उसके अलावा जो है अभी जो क्या कहते हैं एक इवेंट हुआ था आपका यहां पे मेरे ख्याल से एक दिल्ली में भी इवेंट हुआ था जहां पे काफी सारे विमेन ग्रैंड मास्टर्स आई थी, पिछले साल आई थी, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो विमेन्स चेस पे भी बहुत ज्यादा फोकस है और भी काफी सारे प्लेयर्स उभर के आ रहे हैं। और द मेन चीज है कि जो चेस के जो पे फोकस है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का, अब कैंडिडेट्स में जब टीम गई थी इंडिया की तो उसमें वैशाली भी थी, प्रज्ञानंदा भी थे और डी गुकेश भी थे। तो प्रज्ञानंदा ऑल दो वो दावेदारी नहीं रख पाए डिंग लिरेन से कंटेस्ट करने के लिए वर्ल्ड चैंपियन, लेकिन आर वैशाली ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कुनेरू हम्पी ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया वहां पे, और ये दिखा दिया है पूरे वर्ल्ड को कि डेफिनेटली इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर इन चेस इन द नियर फ्यूचर।
बिल्कुल शतरंज में स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर है भारत, और उम्मीद करते हैं कि जो अभी इस समय चल रहा है टूर्नामेंट इसमें भी बेहतरीन प्रदर्शन होगा भारत का। बैंकॉक में विश्व मुक्केबाजी क्वालिफायर में भारत के सचिन सिवाच क्वार्टर फाइनल में और संजीत कुमार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दोनों ने अपने अपने वर्गों में हुए मुकाबलों में आसानी से मैच जीतकर अगले दौर में जगह बनाई है, तो ये दोनों लोग अभी क्वालिफायर्स में जो अपने अपने वर्गों में आगे बढ़े हैं तो और दावेदारी मजबूत की है।
देखिए ऐसा है
कोटा हासिल करने के लिए
जागृति जी, ऐसा है कि विमेन में हमारे हिंदुस्तान के चार कोटा आ गए थे पेरिस ओलंपिक्स के लिए, लेकिन बदकिस्मती से एक कोटा चला गया क्योंकि एक जो एथलीट जिसने ओलंपिक कोटा जीत लिया था फीमेल बॉक्सर परवीन हुडा, उनका कोटा ले लिया गया बिकॉज ऑफ वेयर अबाउट्स क्लॉज के चलते नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने उनको सस्पेंड कर दिया। तो अब जो है उन्हीं की जगह जैस्मीन जो दूसरी लंबूरिया है वो 57 केजीज में वो कम्पीट कर रही है वहां पे, तो होपफुली अगर वो जीत जाती हैं तो वो कोटा वापस इंडिया के पास आ जाएगा। लेकिन बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात ये रही है कि अभी तक जो है कोई भी पुरुष वर्ग में किसी ने भी अभी तक कोई ओलंपिक कोटा इंडिया के लिए बॉक्सिंग में नहीं जीता है। तो डेफिनेटली सचिन सिवाच से 57 केजी में, संजीत कुमार से 92 केजी में, और मेरे ख्याल से अमित पंगल जो एशियन गेम्स 2018 एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं जकार्ता एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनका भी इवेंट जो है बाउट शाम को होगा, लेट इन द इवनिंग टुडे। तो अगर ये तीन आगे बढ़ते हैं और कुछ और कोटा ला पाते हैं, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज नहीं तो मेन विल गो अनरिप्रेजेंटेड इन दी ओलंपिक गेम्स, विच वुड बी अ वेरी सैड कमेंट्री फॉर बॉक्सिंग इन द कंट्री।
जी, सचिन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में तुर्की के ओलंपियन बटुहान सिफ्सी को 5-0 से हराया। वहीं संजीत ने 92 किलोग्राम भार वर्ग के राउंड ऑफ 32 में वेनेजुएला के लुई सांचेज को 5-0 से मात दी। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने दुनिया की दूसरे नंबर की दक्षिण कोरियाई जोड़ी बायखाना और ली सोही को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। हालांकि बात अगर पीवी सिंधु की करें तो अपनी चिर प्रतिद्वंद्वी कैरोलिना मारिन से वो प्री क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर हो गई हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय भी अपना मुकाबला हार गए हैं।
जी हाँ, ऐसा है कि दिस इज द सिक्स कंसेक्यूटिव लॉस फॉर पीवी सिंधु, मतलब गोइंग बैक टू 2018, मतलब 2018 के बाद जो है एक मेंटल ब्लॉक है या कोई जिंक्स कह लीजिए, पीवी सिंधु कैरोलिना मरीन जो स्पेन की उनको नहीं हरा पाई है जितने भी उनके एनकाउंटर्स हुए हैं। और जो 17 मैच आज तक खेले हैं कैरोलिना मरीन ने और पीवी सिंधु में, उसमें से 12 कैरोलिना मरीन ने जीते। और रियो ओलंपिक गेम्स में भी जो है 2016 की रियो ओलंपिक गेम्स में, वहां पे भी जो फाइनल हुआ था वो कैरोलिना मरीन और पीवी सिंधु के बीच में ही हुआ था और पीवी सिंधु फिनिश्ड सेकेंड बेस्ट और उनको सिल्वर मेडल मिला था। तो देखा जाए तो कैरोलिना मरीन डेफिनेटली फिर से इस ओलंपिक्स आ रहा है और ओलंपिक मेडल की दावेदार रहेंगी। उसी जगह पीवी सिंधु भी उनका भी परफॉर्मेंस अगर आप देखें, पिछले मलेशिया मास्टर्स हुआ था लास्ट
थाईलैंड ओपन में भी वो
थाईलैंड ओपन नहीं था, वो मलेशिया मास्टर्स में वो रनर अप रही हैं और वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। मतलब दिस इज पहली बार, ये 2023 में जब स्पेन मास्टर्स के बाद 2023 के बाद ये पहली बार मलेशिया मास्टर्स में 2024 में ये फाइनल के दौर में पहुंची और रनर अप फिनिश करी। एक चाइनीज ओपोनेंट से हार गई थी पीवी सिंधु। तो डेफिनेटली एक लय में आ रही हैं, एक इनको इंजरी हुई थी आपको अगर मालूम होगा 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उनके बाद उनको एक हैमस्ट्रिंग एक हील इंजरी हो गई थी जिसके चलते वो 5-6 महीना जो थी वो बिल्कुल ही नहीं खेल पाई थी। उसके बाद शी इज नॉट हर यूजुअल सेल्फ। और कमाल की बात तो ये जो जहां सिंगापुर ओपन जहां खेल रही है ये 2022 की विजेता रही है।
ये कहा भी जा रहा था कि सिंगापुर
इनका हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है, 2022 में इन्होंने टाइटल भी जीता है। लेकिन बदकिस्मती से 2024 में शी इज नॉट इनर, अभी धीरे धीरे लय पकड़ रही है, फॉर्म पकड़ रही। और देखिए कोई भी एथलीट जो है जैसे ओलंपिक गेम्स
बिल्कुल
सिर्फ दो महीने दूर है ओलंपिक गेम्स, तो कोई भी खिलाड़ी रिस्क नहीं लेना चाहता इंजरीज के साथ। और पीवी सिंधु क्वालिफाई कर चुकी हैं ओलंपिक गेम्स के लिए, तो डेफिनेटली उनके ऊपर काफी दारोमदार रहेगा कि तीसरा मेडल ओलंपिक में लाएं। गोल्ड सिल्वर आ चुका है, ब्रोंज आ चुका है, शायद गोल्ड के लिए वो आशा कर रहेंगी पेरिस में।
त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी से हालांकि अभी इस टूर्नामेंट में उम्मीदें हैं क्योंकि आज उन्होंने दक्षिण कोरिया की जोड़ी को 21-9, 14-21 और 21-15 से हराया है। भारत की रितिका सीलन हांगकांग पीएसए चैलेंज कप स्क्वाश टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 6वीं वरीयता प्राप्त रितिका ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर में मेजबान देश की ह्यूएन लेउंग को 3-2 से हराया। क्वार्टर फाइनल में रितिका का मुकाबला मलेशिया की 3वीं वरीयता प्राप्त सेवित्रा कुमार से होगा। और भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने कल जर्मनी के खिलाफ शूटआउट में जीत दर्ज की जबकि जूनियर महिला टीम ने उरांजर रूट के खिलाफ ड्रॉ के साथ अपना यूरोप दौरा समाप्त किया। और चलते चलते आपको बता दें कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम ताशकंद में कल उज्बेकिस्तान से मुकाबला खेलेगी। भारतीय टीम को अपने से अधिक रैंकिंग वाली उज्बेकिस्तान के खिलाफ अगर अपना रिकॉर्ड सुधारना है तो उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। आप क्या कहते हैं?
जी हां बिल्कुल, उज्बेकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक बार हराया हिन्दुस्तान ने, वो 2003 में हराया था, उसके बाद कभी भी नहीं हरा पाई है। तो डेफिनेटली उज्बेकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है और मेरे ख्याल से 20 या 22 रैंक हायर रैंक है इंडिया से। तो डेफिनेटली अगर यहां इंडिया जीतती है, चौबा देवी की टीम जीतती है, कोच है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
जी बिल्कुल अजय, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार।
नमस्कार।